नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं विशेष पुस्तक के खास अध्याय पर बात करेंगे। डॉक्टर प्रणव पंड्या की पुस्तक है महाशक्ति की लोक यात्रा।
जी, और ये पुस्तक वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है जो गायत्री परिवार की संस्थापिका है।
बिल्कुल। और हम जिस अध्याय की बात कर रहे हैं वो है बाल्यकाल के लीला प्रसंग। इसमें उनके बचपन की कुछ अद्भुत घटनाओं का जिक्र है। ये पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व द्वारा संपादित है और कहा गया है कि इसमें जो भी लिखा है वो मतलब देखी सुनी महसूस की गई सच्ची घटनाओं का एक संग्रह है।
हाँ, एक भावपूर्ण संकलन। और ये समझना जरूरी है कि बचपन की ये बातें अक्सर किसी के आगे के जीवन की नींव रखती हैं, है ना?
सही कहा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि वंदनीय माता जी के बचपन की उन खास बातों को समझें जिनसे उनके असाधारण व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है। चलिए शुरू करते हैं फिर।
जी जरूर। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि उनके बचपन में दिव्यता और एक तरह की सहजता या कहें सामान्यता का कैसा मेल था।
पुस्तक में जिक्र है कि बचपन में घर पड़ोस के लोग उन्हें प्यार से लाली बुलाते थे, और ये नाम वैसे ब्रज क्षेत्र में राधा रानी के लिए भी इस्तेमाल होता है।
अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है, एक तरह का संकेत शायद।
हाँ, हो सकता है। बताया गया है कि उनका रंग रूप तो साधारण था पर उनमें एक अजीब सा आकर्षण था, मतलब जो भी मिलता था खिंच जाता था।
और स्वभाव कैसा था?
शरारती बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं, शांत भोली भाली सी। और उनके पिता जसवंत राव जी, उनका उन पर बहुत स्नेह था, बहुत ज्यादा।
तो ये शांत स्वभाव और ये आकर्षण, साधारण होते हुए भी ये किसी अंदरूनी दिव्यता की तरफ ही इशारा करता है ना? मतलब कोई बाहरी चमक दमक नहीं बल्कि भीतर की बात।
हाँ, ऐसा ही लगता है। फिर देखिए, केवल 4 साल की थी वो जब उनकी माँ राम प्यारी जी उनका देहांत हो गया। ये तो बहुत ही दुखद घटना थी।
4 साल की उम्र में बहुत कठिन समय रहा होगा।
हाँ, वो रोई भी, लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा पुस्तक बताती है, कि इस मुश्किल घड़ी में भी उनकी चेतना जैसे जागी हुई थी।
जागी हुई थी मतलब
ये कि वो कभी कभी अपने से बड़े भाई बहनों को ही सांत्वना देने लगती थी। आप सोचिए, 4 साल का बच्चा।
सच में ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, इतनी कम उम्र में ऐसी समझदारी, दूसरों को संभालना, ये साधारण तो नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये उनके अंदर की असाधारण शक्ति को ही दिखाता है। पुस्तक में इसे उनकी सहज आंतरिक शक्ति ही बताया गया है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, उनके गंभीर चिंतन की। वो अक्सर अकेले में बैठ जाती थी शांत पालथी मारकर।
अच्छा, खेलती नहीं थी?
खेलती भी होंगी, पर ये भी एक पहलू था। एक बार उनके बड़े भाई दीनदयाल जी ने पूछ ही लिया, क्यों रे लाली ऐसे शांत क्यों बैठी रहती है, बच्चों की तरह खेलती क्यों नहीं, तुझे देखकर तो लगता है जैसे दुनिया भर का बोझ तेरे ही सिर पर है।
और उन्होंने क्या कहा उस उम्र में?
उन्होंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, हाँ सो तो है, सारी दुनिया का भार मुझ पर नहीं तो और किस पर होगा।
क्या बात है, ये जवाब तो हिला देने वाला है, उस उम्र में ऐसी बात।
हाँ, सब हैरान रह गए थे सुनकर। ये सिर्फ कोई भविष्य का आभास नहीं लगता, ये शायद उस चेतना का, उस जिम्मेदारी के एहसास का पहला संकेत था जो आगे चलकर उन्होंने निभाया।
सही कह रही हैं आप, उस समय शायद किसी ने इस बात की गहराई न समझी हो, पर ये उनके भावी जीवन की एक झलक थी।
बिल्कुल। और देखिए, इस गंभीरता के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्हें हम अलौकिक कह सकते हैं।
जैसे?
उनकी भाभी थी दीनदयाल जी की पत्नी, वो वंदनीय माता जी से बहुत स्नेह करती थी और उन्हें किसी देवी जैसा मानती थी।
अच्छा।
तो एक बार हुआ यूं कि भाभी अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी, वो आए नहीं तो भाभी चिंता में पड़ गई।
स्वाभाविक है।
पर वंदनीय माता जी ने बिना किसी के कुछ कहे उनकी चिंता समझ ली और उनसे कहा, आप इसलिए परेशान है ना कि पिताजी नहीं आए।
अरे, उन्होंने खुद ही पूछ लिया।
हाँ, और फिर बोली उन्हें तेज बुखार आ गया था इसलिए नहीं आ सके, चिट्ठी लिखी थी पर वो देर से मिलेगी, पर चिंता मत करो वो आज चलने की तैयारी कर रहे हैं, कल आ जाएंगे और चिट्ठी भी आज ही मिल जाएगी।
और क्या सच में ऐसा हुआ?
जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उसी दिन चिट्ठी आई और अगले दिन उनके पिता आ गए और उन्होंने भी वही बताया, तेज बुखार था इसलिए नहीं आ पाए थे।
ये तो कमाल है, ये साधारण अंतर्ज्ञान नहीं है, ये तो भविष्य को बिल्कुल साफ साफ देख लेने जैसा है।
हाँ, पुस्तक इसे उनकी दैवी शक्ति का ही प्रमाण मानती है, भावी का विश्वास तो और पक्का हो गया इसके बाद।
होना ही था, ये घटना उनके जीवन के अलौकिक पक्ष को उजागर करती है।
पर ऐसा भी नहीं था कि वो बस गंभीर या अलौकिक बातों में ही रहती थी, बचपन के खेल भी खेलती थी। अपनी भाभी और बड़ी बहन के साथ गुड़िया गुड्डे का खेल उन्हें बहुत पसंद था।
अच्छा, सामान्य बच्चों की तरह?
हाँ बिल्कुल, गुड़िया से जाना, उनकी शादी करना, फिर गुड्डे का बीमार पड़ जाना, वैद्य को बुलाना, जड़ी बूटी पीसना, ये सब चलता था और पूरा परिवार उसमें शामिल होता था खुशी खुशी।
तो मतलब सामान्य बचपन की झलक भी थी, लेकिन पुस्तक ये भी कहती है ना कि इन खेलों में भी कभी कभी उनकी दिव्य लीला दिख जाती थी।
हाँ, ऐसा जिक्र है कि खेल खेल में ही कोई गहरी बात, कोई गहरा भाव प्रकट हो जाता था। तो ये दिखाता है कि उनका बचपन साधारण अनुभवों और असाधारण संकेतों का एक मिलाजुला रूप था। तो कुल मिलाकर हमने इस अध्याय से देखा कि वंदनीया माताजी के बचपन में ही उनके शांत स्वभाव, छोटी उम्र में परिपक्वता, भविष्य के बड़े दायित्वों का एक अनकहा एहसास और अलौकिक क्षमता के साफ संकेत मौजूद थे।
जी, ऐसा लगता है जैसे ये सब अनुभव उनके उस महान जीवन की तैयारी कर रहे थे जिसकी भूमिका उन्हें आगे निभानी थी।
बिल्कुल, ये उनके असाधारण जीवन की जैसे प्रस्तावना थी।
और ये बात एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है ना, कि बचपन की ये जो खास अनुभूतियां थीं, ये जो सहज ज्ञान था, इसने आगे चलकर उनके जीवन को, उनके इतने बड़े कार्यों को और जो उनकी पहचान बनी महाशक्ति के रूप में, उसे कैसे गढ़ा होगा।
हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये बचपन की नींव उनके उस विशाल व्यक्तित्व का आधार बनी जिसने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। इस पर वाकई विचार करना चाहिए।
जरूर, ये एक गहरा चिंतन का विषय है।